यह प्रवचन राधा कृष्ण प्रभु के द्वारा 24 अप्रैल 2013 श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 7।
वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञात वास कर रही है। कृपा करके वहां जाओ। तात्पर्य राजा नंद का आवास नंद गोकुल अर्थात अत्यंत सुंदर था और जब योग माया को वहां जाकर भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया तो यह और भी सुंदर और सुरक्षित हो गया, क्योंकि योग माया में ऐसी वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए उसे नंद गोकुल के यहाँ जाने का आदेश दिया गया। तो भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत कथा रस पान करने का अवसर प्राप्त होता है। दशम स्कंध भगवान की अवतार लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कर रहे हैं। भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है और उसमें भी भगवान कृष्ण का तो दिव्य ही है, क्योंकि भगवान इस अवतार को लेने में कुछ नए नए कार्य कर रहे हैं। भगवान का वाक्य है, मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। युगे युगे संभवामी, लेकिन किसी अवतार में योग माया को आदेश दिया हो तो वो केवल एकमात्र यही अवतार। सब अवतार में योग माया को आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कल का प्रसंग महाराज परम पूज्य लोकनाथ महाराज मुखारविंद, उसका अंतिम शब्द था योग माया समाधि शक्ति। भगवान सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ इसलिए है कि सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वही सब कुछ जान सकता है। गीता में भगवान की प्रतिश्रुति है कि मैं सब जानता हूँ, वेदाहम सम अतीतानि, जो बीत गए वो भी मैं जानता हूँ, वर्तमान में है वो भी और भविष्य में क्या होगा ये मैं सब जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान का ये दुखोक्ति दुख के साथ ये उक्ति है, उद्गार है। विशेष रूप से ये मनुष्य शरीर भगवान को जानने के लिए ही बना है, लेकिन अयम देहम प्राप्य, इस देह को मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी पशु सदृश धर्मों का आचरण व्यवहार करने पर भगवान को बहुत दुख है और कहते हैं माम तु वेद न कश्चन। बहुत दुख की बात है कि लोग मुझे कोई जानते नहीं है और जानने वालों में भी मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यते और यत्तामपि, यत्न करने वालों में भी कोई कोई सिद्धि को प्राप्त होता है, सफल होता है। सिद्ध होता है और सिद्धों में कष्टिन माम देखते हैं, कोई कोई तत्व से मुझे जान पाता है। तो शरीर भगवान को समझने के लिए ही, प्राप्त करने के लिए ही मिला है। हम लोग वर्तमान में जिस स्थान पर हैं, ये भी भगवान के माया का, देवी का ही स्थान है। माया तो ठीक यही श्लोक चल रहा था, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति छाई वजस्य भुवनान विभर्ति दुर्गा। ये सृष्टि स्थिति और प्रलय, इसके इंचार्ज एक प्राकृत जगत के इंचार्ज श्री दुर्गा जी, छाई वजस्य दुर्गा, ये विभर्ति भरण पोषण करती है, मेंटेन रखती है दुर्गा जी। भगवान की अनंत शक्तियां हैं और उसमें सृष्टि स्थिति प्रलय प्रलय करने की जो शक्ति है उसको भी देवी कहते हैं। यहां पर भगवान जो गच्छ देवी आदेश दे रहे हैं, कल के श्लोक में था विदित्वा कंसजम भयम्, कंस के भय को भगवान समझ गए बिना किसी पूर्व या अन्यों के द्वारा कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और क्या कारण, कैसे समझ गए, बोले तो विश्वात्मा है। महाराज जी का वाक्य है कि हम सब लोग एक देह के विषय में भी नहीं जानते हैं, देहात्मा भी नहीं है। शरीर में रोग कैसे होता है, कैसे क्या क्या फंक्शन चल रहा है, इसके भीतर हमको ज्ञान नहीं है। परंतु भगवान सब जगह है, अंतर बही अवस्थित। कृति महारानी कहती है बाहर भी अवस्थित है और भीतर भी अवस्थित है। तो इसलिए भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह है, इसलिए सब कुछ जानते। कहा हूं तो कहा प्रभु नाही, तो वो स्थान बताओ जहां भगवान न हो। तो सब जगह भगवान है इसलिए सब जगह की बात जानते हैं। तो भगवान जान गए कंस के द्वारा, कंसज भय को विदित्वा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। भागवत में बहुत बार ये बात आई है। इसी प्रसंग में जब चिरोदक्षायी विष्णु भगवान परम पुरुष के वाक्य को कहते हैं तो कहते हैं पुरैव, तुम सब लोगों के विज्ञापन के, एडवर्टाइजमेंट के, निवेदन के पहले ही परम पुरुष भगवान को पृथ्वी का ज्वर पता है, बुखार यहां पर है, ज्वर धरा ज्वर, और भगवान को गोलोक में वैकुंठ में सब पता है कहां क्या हो रहा है। तो ये भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वविद्यता का अनुष्ठान करती है, स्थापित करती है। भगवान सब जगह है और कंस के द्वारा भय, कंस बहुत बड़ा अत्याचार करने लगा। विशेष रूप से श्री नारद जी ने बताया कि ये सब देवता हैं और हम अभी अभी वैकुंठ से ही मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं। ये विष्णु केवल एक जन्म का तुम्हारा शत्रु नहीं है, इसके पहले भी तुम काल नेमी बने थे, तो इसने छल करके तुमको मारा था। ये खानदानी शत्रु है, इस जन्म में जो दुश्मनी करे उसको शत्रु कहते हैं, और खानदान दर खानदान से यदि दुश्मनी आ रही हो तो उसको संस्कृत में रेपू कहते हैं। खानदान दर खानदान से शत्रुता आ रही है, बोले एक जन्मों का ये शत्रु नहीं है, तुमको मारन तुमको तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहता है, इसलिए अभी अभी हम मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं और पता लगा कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफी किए हो, मूर्खता किए हो, तुमने बच्चे को छोड़ दिया। कोई भी बच्चा विष्णु हो सकता है, इसलिए सबको मारो। ये सब जितने भी नंद बाबा के और वसुदेव जी के जितने भी संबंधी हैं, ये सर्वे वही देवता पराया, ये सबके सब देवता है। और सारे देवता किस लिए प्रकट हुए हैं? केवल तुम्हारा वध करने के लिए। इसलिए अच्छा है कि उनको वो बलवान हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, इससे पहले उनको समझ। नारद जी की स्तुति को सुन करके एक तो भाल और ऊपर से उसको कुदाल मिल जाए तो उसकी हालत तो बहुत खराब हो जाएगी। कंस सब तरह से जब सुना कि ये सभी जादव देवता हैं और ये मुझे मारने के लिए ही आए हैं यहाँ पर, तो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और अन्य भी जितने इसके सहयोगी थे, सुखदेव गोस्वामी उन असुरों का नाम गिन रहे हैं अध्याय के प्रारंभ में ही। प्रलम्ब, मकर, चाणूर, अरिष्टासुर, मुष्टिक, पूतना, फेसी, अघासुर, वकासुर, ये जितने भी असुर थे सबका नाम ले रहे। ये एक से एक बहुत बड़े बड़े असुर थे। ऐसे ऐसे असुर थे कि देवता भी उनके सामने आकाश मार्ग में भी नहीं है, इतना मनोती करते रहते थे, मान्यता करते रहते थे कि भगवान कब ये मर जाए, परंतु इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने आ जाए। सुखदेव गोस्वामी इन सब का नाम ले रहे। देवताओं में कौन कौन देवता आया उसका नाम नहीं लिया, परंतु असुरों का नाम जप कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और नाम जप इसलिए कर रहे हैं कि ये सभी वृंदावन धाम में आकर ब्रजवासी बन करके इनका विनाश होगा, क्योंकि भगवान का और उनके धाम का स्वरूप है यद गत्वा नानिवर्तन्ते। एक बार जो धाम में आ गया फिर वो पुनः वापस नहीं जाएगा। तो कर्ण के द्वारा भेजे हुए जितने आते थे समाचार ही उसको प्राप्त होता था, वो नहीं मिलते थे, वो लौट करके समाचार कौन देने जाए, जो जाता था वो वहीं रह जाता था। सुखदेव गोस्वामी नाम लेते हैं प्रलम्ब, बहुत बड़ा असुर था, बहुत लंबा, और सखा का स्वरूप धारण करके गया था, मित्र बना था, खेल हो रहा था। एक जो हार जाएगा वो कंधे पर चढ़ा करके कुछ कुछ खास स्थान तक ले जाएगा। वाह्य वाहक लक्षण खेल इसको करके, हार गया तो वो ढोएगा और जो जीत गया वो चलेगा। तो भगवान कृष्ण के पक्ष में ये हो गया, एक पक्ष श्री बलराम जी का था और एक पक्ष कृष्ण का था। तो ये कृष्ण की महिमा को जानता था कि ये बड़ी नटखट है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इसके पक्ष में रहेंगे तो कोई हमको समझेगा नहीं। और संयोग की बात, कृष्ण के पक्ष की हार हो गई तो भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के भाई श्री दामा जी को अपने कंधे पर चढ़ाया। और उसी पक्ष में ये भी था प्रलम्बासुर, तो ये सोचा कि ये तो टेढ़ा है, परंतु एक इसका जो भाई है बलराम जी, ये सीधे साधे हैं, इनको मारना चाहिए। तो उसको पता नहीं था कि श्री बलराम जी भी वही आहार द्वितीय देह श्री बलराम ये भी भगवान है ऐसा इसको पता नहीं। तो बलराम जी को ले चला कंधे पर चढ़ा करके और जहां ले जाना था थोड़ा ही दूरी तक ढोना था, लेकिन वहां पर जब ले गया तब सोचा कि अब अपने रेंज से बाहर ले जाना चाहिए। महाराज जी कहते हैं जैसे रनवे पर हवाई जहाज दौड़ने के बाद यूं उड़ता है, इस तरह से श्री बलराम सिंह को लेकर के उड़ गया। बलराम जी को बड़ी आश्चर्य हो गए कि ये क्या, ये कौन सा सखा है। खास स्थान पर ही ले जाकर उतारना था, लेकिन ये बिल्कुल आकाश मार्ग में उड़ गया। और बलराम जी अपने कोमल हाथों से ही कर कमले कमल कर कमल नगरम अद्भुत सुंदर, समस्त बलों के भंडार हैं ऊपर जैसे ही मारा तो तुरंत उसका प्राण समाप्त हो गया और ग्वाल बालों के बीच में ही गिरा। और सब लोग उद्विग्न हो गए संविग्न हो गए कि तो खेल क्या हुआ, बलराम जी को ले गया उड़ा कर। अब उस दिन से सिकरी की डाइट हो गया, अपने सखा लोगों को भी चेकिंग होने लगा कि ये शरीर में सखा है कि कहीं और ऐसा हो गया। फिर सखा के रूप में आया था असुर ले गया श्री बलराम जी को, तो हो सकता है फिर कोई प्रलंब आया है, सिकरी की डाइट कर दिए। बकासुर आया था भगवान को मारने के लिए, ये सब बहुत बड़े बड़े असुर थे, बगुला बन करके आया था और समी ग्वाल गोपों को खा गया था, भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। तो भगवान भी उसमें प्रवेश कर गए, सोचे जब हमारे सखा इसमें जा रहे हैं तो मैं अकेले क्या करूंगा, भगवान की शोभा भी उनके भक्तों से होगी। और उसके कंठ में जा करके विशाल रूप धारण करके अपने अग्नि शक्ति का आवाहन किया भगवान ने और उसका कंठ जलने लगा। भगवान को बाहर उगल दिया और चोंच से मारने का प्रयास किया, भगवान ने दोनों चोंच पकड़ करके उसको मारा। तो सामान्य बकुला नहीं था, बक नहीं था, बहुत विशाल महासनई शब्द है इसमें, एक से एक ये सभी कंस के मित्र थे, सहयोगी, यादवों को सताने के लिए इन सभी असुरों का सहयोग लेता था। बहुत बड़ा, और इसी की बहन थी, बक की बहन होने के कारण उसको बकी कहते हैं। उतना बाल हत्या आयोग की चीफ, मुख्य कार्यकारिणी ये थी, बच्चों को हत्या करने का जो योजना बना तो उसमें ये मुख्य। चाणूर बहुत बड़ा पहलवान था, कंस ने खिलाया था उसको। मैं ऐसा सुना हूं कि पहले प्रत्येक घर में लोग एक विद्वान रखते थे और एक पहलवान रखते थे, इसलिए कि बुद्धि की जरूरत पड़ी तो विद्वान काम करेगा और बल की जरूरत पड़ी तो विद्वान की कोई जरूरत है नहीं, पहलवान की जरूरत है तो लोग पहलवान रखते थे प्रत्येक घर में। पहले हम लोग छोटे थे तो देखते थे कुश्ती, गांव गांव में दंगल कुश्ती अखाड़ा होता था। और आस पास के पहलवान आकर के उसमें अपना ताकत अपनी शक्ति अजमाते थे। तो कृष्ण को भगवान को मारने के लिए कंस भी पांच मुख्य, ऐसे तो सैकड़ों हजारों पहलवान थे, उनको खिलाता ही इसलिए था कि कृष्ण को मारना है, परंतु पांच उसमें मुख्य थे, चाडूर, मुष्टिक, सल, तोसल और कुछ। त्रिनावर्त चक्रवात बनकर के आया था, भगवान को ले गया, वो भी मारा गया। मुष्टिक अरिष्ट एक बैल का रूप बना करके आया था। द्विविद नाम का एक बंदर था, त्रेता युग में भगवान के साथ रावण के विरोध में युद्ध किया था। विषम कंस के मित्रों की कथा सुना रहे हैं। त्रेता युग में भगवान के साथ सहयोग में लड़ा था, लेकिन था बदमाश, इसलिए भगवान ने इसका श्री बलराम जी ने इसका वध किया। जब उसको पता चला कि हमारे मित्र कंस को कृष्ण ने मार दिया है, तो मथुरा से द्वारका में आया था और इतना भारी उत्पात किया कि अपने हाथ से समुद्र का पानी उछाल उछाल करके ऐसा लगा कि द्वारका डूब जाएगा। ऐसा बांधा, और श्री बलराम जी भी अपने सतियों के साथ, प्रेयसियों के साथ जब रास लीला करते हैं, रास यात्रा करते हैं, एकांत में थे रैवतक पर्वत पर, तो ये वहां पर पहुंच गया और भगवान के प्रेयसियों को, श्री बलराम जी के प्रेयसियों को बहुत बहुत प्रकार से त्रास देने लगा। पहले तो वो डराता, डराने लगा। बंदर घुड़की एक शब्द है, जानते हैं ना, ऐसा लगता है कि दांत ऐसा बनाते हैं कि अब खा जाएंगे, थोड़ा सा लेकर के डंडा चाहे तो छुटिए तो भाग जाते हैं, ऐसा डराने लगा। और इतना ही हिम्मत नहीं किया, श्री बलराम जी के प्रेयसियों को ये कपड़ा अपड़ा सब फाड़ दिया। श्री बलराम जी के जो मधुपान करने का, शहद पीने का जो प्रिय चीज है, वो पात्र को उठाया और फोड़ दिया। तो भगवान ने तो बहुत बर्दाश्त किया, और जब देखे कि ये सीमा पार हो गई, यहाँ तक कि अपने लीला के मध्य में अपने गुप्त अंग को भी प्रदर्शन करने लगा। बंदर था ही, कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं। वो ये सब उत्पात जब भगवान ने देखा तो फिर उसको बात, ये भी कंस के सहयोग में। अब आप समझिए कितनी शक्ति थी, अपने हाथ से पानी ऐसे उलिझता था तो लगा कि पूरा गुजरात बिल्कुल पहुंच जाएगा, पूरे गुजरात और सौराष्ट्र को त्रस्त करके रख दिया था एक बंदर, और वो कंस का सहयोग। पूतना, पूतना का नाम आप तो जानते ही हैं, केसी घोड़ा बन करके गया था। अब घोड़ा कहने का मतलब हम लोगों के जैसा घोड़ा नहीं, भागवत में वर्णन है कि जिस समय घोड़े जैसे हिन हिनाते हैं ना, तो ये केसी नाम का राक्षस जब हिन हिनाता था तो स्वर्ग के देवता भी स्वर्ग में डर के मारे कांपने लगते, और उसके लंबाई चौड़ाई का वर्णन भागवत में है कि जिस समय भगवान अलग अलग बाल भी देते हैं ना, ब्रह्मा जी की सृष्टि ऐसी है, किसी के सर पर बाल होगा तो किसी के गर्दन पर होगा तो किसी के दाढ़ी में होगी। दाढ़ी में बाल किसकी होती है? बकरे के। उसके सिर पर बाल नहीं होता है, गर्दन पर बाल नहीं होता है, केवल दाढ़ी में होता है। और घोड़े के सिर पर बाल नहीं होता है, उसके गर्दन पर बाल होता है। ये अलग अलग भगवान की सृष्टि है ब्रह्मा जी की। ये जब अपने घोड़े के रूप में था और बाल को इधर से उधर करता था, तो ये आकाश का बादल तितर बितर हो जाता है। आकाश में जो आप ऊपर बादल देखते हैं, एक से विशाल शक्ति वाले आकार वाले असुर ये सब थे, धेनु कई तालबंध की लीला स्मरण कीजिए। गधे के रूप में एक नहीं लाखों लाखों गधे के रूप में ये लड़के, एक भी ब्रजवासी बच्चों को हिम्मत नहीं थी कि एक भी फल खा ले, तो श्री बलराम जी ने भी इसका बल किया। अन्य असुर भूपालय, और दुनिया में जितने भी दुष्ट राजा थे असुर राजा, ये सब कंस के मित्र थे। इसलिए जहां जहां जादव थे जिस क्षेत्र में वहीं वहीं पर इसने आदेश दिया। इसमें वर्णन करते हैं कि राजाओं में बाणासुर था और भौमासुर था। ये बाणासुर बलि महाराज का पुत्र है और भगवान की कृपा से इसको 1000 हाथ मिल गए। भगवान से द्वेष किया तो भगवान ने काट दिया और 4 हाथ केवल रखा, वो भी 2 ज्यादा ही छोड़ दिया, 2 ही रखना चाहिए था। भगवान ने मारा इसलिए नहीं क्योंकि प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि आज के बाद तुम्हारे कुल में होने वालों का मैं वध नहीं करूंगा, तो इसलिए प्राण दंड नहीं दिया जान से। और एक था भौमासुर, ये सब कंस के मित्र थे, भूमि का पुत्र था, इसलिए इसको भूमि से प्रकट होने के कारण भौम असुर कहते हैं। लेकिन पता नहीं इसके दीक्षा का नाम था नरकासुर, इनिशिएटेड नाम था। अब किसने रखा ये पता नहीं, ये शास्त्र नहीं बताता। नरक ही था वो। एक बार नारद जी से पूछा कि प्रभु भगवान बनने की इच्छा है, कुछ उपाय बताइए, कुछ प्रयास करो। तो नारद जी ने कहा कि जो भगवान होगा उसको 16100 पत्नियां होंगी और इस मूर्ख को बात समझ में नहीं आई, इसने सोचा कि 16100 पत्नी होगी वो भगवान हो जाएगा। आप समझे ना दोनों में अंतर क्या है। नारद जी ने क्या कहा, भगवान को 16100 पत्नियां होगी, तो जो भगवान होगा उसकी पत्नी होगी, परंतु ये सोचा कि जिसे इतना पत्नी हो जाएगी वो भगवान हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े राजाओं को हरा करके मार करके, क्योंकि कंस ने आज्ञा दिया था कि सभी जितने भी पृथ्वी पर यादव हैं विशेष रूप से ये अहीर लोग, इन सबको मार देना है, क्योंकि 33 करोड़ देवता, सभी देवता स्वर्ग में एक स्वरूप से हैं और एक स्वरूप से यदु और यदुवंश में। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया था ना, तुम सब लोग कंस के साथ भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए यादव बन। ये 16100 लड़कियों को एक जगह बंद रखा था, लेकिन खुशी की बात यह थी कि इतना असुर होते हुए भी उसमें मर्यादा थी, उसको इतना ज्ञान था कि जब तक विवाह न हो जाए तब तक इन लड़कियों का स्पर्श भी नहीं करना, और ये स्पर्श कर भी नहीं सकता था क्योंकि भगवान की प्रेयसियां हैं, नित्य प्रेयसी हैं ये लोग, जहां तहां जन्म ली है उनको इकट्ठा किया और गिनते गिनते 16100 संख्या पूरी हुई। और उसी समय सभी राजकुमारियों ने बच्चियों ने भगवान के पास पत्र लिखा, गुफा में बंद कर दिया था। और भगवान तो प्रसन्न नहीं थे कि 16100 विवाह करना है तो कहां कहां बारात लेकर के जाएंगे, कितने बरगोड़ा और बैंड बाजे और प्रपंडित जी और क्या क्या सब करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि ये असुर मेरे सभी प्रेयसियों की पत्नियों को एक जगह इकट्ठा करेगा और आनंद के साथ एक बार ले जाएंगे और एक ही दिन में ये सारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। तो भगवान तो प्रसन्न थे, परंतु इसका नाम दे रहे हैं, ये इसका नाम था भौमासुर, नरकासुर। 16,100 बड़े बड़े राजाओं को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को, लड़कियों को जुटा कर एक जगह इकट्ठा किया, ऐसे ऐसे असुर। और जरासंध जो मगध नरेश है गया का, वो भी बहुत बड़ा बलवान था, भगवान पर 17 साल चढ़ाई किया। और महाभारत युद्ध में तो केवल 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश वो भी एक बार हुआ, ये प्रत्येक एक साल में 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करता है। तो हम लोग कहते हैं महाभारत युद्ध में बहुत बड़ा भीषण नरसंहार हुआ, परंतु 18 से 23 मतलब 5 अक्षौहिणी अधिक सेना एक साल में मारी जाते थे मथुरा में, और मारने वाले अकेले कृष्ण और बलराम दो। इसमें तो बहुत सारे 7 अक्षौहिणी एक तरफ है, तो 11 अक्षौहिणी एक तरफ है, तो कितना तैयारी है, तो ये है, और उसमें कोई तैयारी नहीं होती थी। सारी सेनाओं का विनाश मथुरा धाम में उनका कल्याण होता था, और श्री बलराम जी गुस्से में पकड़ते थे जरासंध को, बोले इसको मार दिया जाए, तो भगवान ने कहा मारो मत, ये अपने मामा का ससुर है। हुआ ना मामा का ससुर, कंस मामा थे और उनका ये ससुर था, बोले हमारे ससुर मामा के ससुर हैं, हमने हमारे संबंधी हैं, छोड़ दे छोड़ दे, तो बलराम जी छोड़ दे, और इस तरह से इसको प्राणदान दिया जाता था। तो क्षत्रिय था, वहां से हिमालय की तरफ बढ़ता था, तो कोई ना कोई राजा टकरा जाता था। जरासंध जी इधर कहाँ जा रहे, बोले बाप रे बाप इतनी भारी बेइज्जती, अच्छा है हिमालय में जाकर भजन करेंगे। बोले भजन तो बाबा लोगों का काम है, पंडित ब्राह्मणों का काम है, आप क्या करेंगे, एक बार में आप निराश हो गए, तो फिर उन सेना को लेकर के फिर आ गए एक साल के, और फिर उसी तरह से भगवान मथुरा धाम में पूरी पृथ्वी ऐसे ही दुष्ट राजाओं से भर गई। राजन्य वंश दहनान अपवर्ग भी, राजा रक्षक नहीं रह गए थे, भक्षक हो गए थे प्रजा के, राजाओं के वंश का विनाश करने के लिए भगवान का योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। ऐसे ऐसे राजाओं के सहयोग से ये कंस बहुत बड़ा और डर से आदेश दिया था कि जिस क्षेत्र में जहां भी यादव हो उनका घर जला दो, उनके पत्नी को, उनके पुत्री को, उन सबका अपहरण करो, और जहां देखो वहां मार दो, घर जलाओ, धन छीन लो, पत्नी पुत्र को मारो। तो बहुत बहुत लोग तो भाग गए, वर्णन है कहां कहां कैसे कैसे भागे। और कुछ लोग अक्रूर आदि एक तमडुरुंधान अज्ञात है परिभाषित, कुछ लोग थे वो मथुरा में ही रह गए, अक्रूर जी इत्यादि वो मथुरा में इसलिए रह गए कि उन्हें पता था कि भगवान इसी मथुरा में आएंगे, इसलिए दुष्ट की सेवा करने के बाद भी हमें भगवान के दर्शन और उनके संग का लाभ हमें मिलेगा, इसलिए कुछ दिन दुष्ट की सेवा भी करनी हो तो भी हम करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करेंगे, इसलिए वो मथुरा नहीं छोड़े, उसका अनुचर बन करके रह गए। और इस प्रकार से जब पूरे अपने सहयोगियों के साथ पृथ्वी को सताने लगा, तो भगवान सर्वसमर्थ है, विश्व के आत्मा है, और इस प्रकार से कंस के भय को, कंसज भय को, कंस के द्वारा जन्म लिए हुए भय को भगवान जान गए। और इस प्रकार से क्या जान गए कि हम जिनके सब कुछ मैं ही जिनका स्वामी हूँ, मैं ही जिनका आराध्य हूँ, इष्ट हूँ, ऐसे हमारे भक्तों पर बहुत बड़ा संकट आया है। इसलिए भक्त वांछा कल्प करो, दीन बंधु बेचारे जा जा करके पूरे भारतवर्ष में छिप गए और थे राजा, परंतु वहां जाकर के किसी का पशु चराते थे, किसी का हल जोतते थे, किसी का बर्तन साफ करते थे, कपड़ा साफ करते थे, और एक ही बात की प्रतीक्षा करते थे कि हमारे कुल में वसुदेव जी कब आएंगे, क्योंकि उन्होंने उनको सुन रखा था कि वसुदेव गृहे साक्षात जनिष्यते पुरुषः परः। वसुदेव जी के घर में परम पुरुष भगवान का अवतार होगा। तो ये बहुत दूर दूर तक जाते थे, कुछ लोग नेपाल में चले गए, कुछ लोग पंजाब में द्रुपद महाराज के राज्य में चले गए, कुछ सालगढ़ में मध्य प्रदेश में, कुछ कुरुक्षेत्र तरफ राजस्थान में, महाराष्ट्र में, सब जगह तितर बितर हो गए। और इस तरह से भगवान ने देखा कि हमारे भक्तों पर इस तरह का संकट है, तो योग माया को जो सृष्टि स्थिति और प्रलय की अधिकारिणी है, ऐसे योग माया को सम आदिशत सम्यक रूप से भगवान ने आदेश दिया। महाराज जी का वाक्य है, भगवान यहाँ पर अपनी सर्वश्रेष्ठता और ज्येष्ठता स्थापित कर रहे हैं। ये जितने भी देवता हैं या देवी हैं, ये सब भगवान के सेवक। चैतन्य महाप्रभु मायापुर गंगा जी के तट पर जब बच्चियां गंगा जी की और देवी जी की शंकर जी की पूजा करने के लिए जाती थी, तो वहां पर सभी पूजाओं को ग्रहण करते थे। निमाई के नटखट लीला का वर्णन है बाल आदित्य लीला में, तो वहां पर वर्णन है कि बच्चियां स्नान करने जाती थी गंगा जी में और सब तक ये देवता बैठ करके पूरा जो भोग था उसको खाने लगते थे। माम नमः और स्वयं अपने हाथ से माला पहन लेते थे, नैवेद्य खाने लगते थे सब, और जब बच्चियां देखती थी तो हाय हाय ये निमाई क्या कर रहे हो, अरे देवता के लिए है, गंगा जी की और देवी की पूजा के लिए है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चुप रहो, गंगा दुर्गा दासी मोर, ये सब हमारी सेविका है, किंकरी है, हाथ जोड़ कर कहती रहती है क्या करो किम करो, सरकार हे नाथ क्या आज्ञा है। और ये शिव की पूजा करोगे, ये तो मेरा सेवक है महेश सतिंकर, प्रभु कहे आमा पूज आमी दिव बर, अरे मेरी पूजा करो मैं तुमको वर दूंगा। और इस तरह से देख करके ये निमाई खा रहा है, माला पहन रहा है, कुछ बच्चियां थाली उठाकर लेकर जब भागती थी तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे रुक जाओ, वो नहीं रुकती थी तो कहते थे अभी श्राप दे रहा हूं तुमको कि तुम्हारा होने वाला पति बूढ़ा मिलेगा। और तुम्हारा जिससे विवाह होगा उसकी साथ साथ सौते होंगी, स्त्रियों के लिए इससे खराब श्राप और क्या हो सकता है, साथ सौत होंगी और उनके बच्चे होंगे और बूढ़ा भरता मिलेगा। अब ये निमाई की बात को सुन करके बच्चियां सोचती थी कि पता नहीं इसमें कौन देवता का निवास है क्या है, सब लोग ला ला करके अपना नैवेद्य माला पुष्प अक्षत चंदन हल्दी दुर्वा जो भी था वो समर्पित ले लो, लेकिन श्राप मत। तो चैतन्य महाप्रभु इस बहाने बताते थे कि ये जितने भी देवी दुर्गा और ये समय सब मेरे सेवक सेविका है। और भगवान जो चैतन्य महाप्रभु को दे देती थी प्रेम से, तो कहते थे तुम्हारा पति बहुत सुंदर मिलेगा, धनी मिलेगा, तुम ससुराल में जाकर सुखी रहोगी, बहुत सुंदर पुत्र होंगे, तुम्हारे सास ससुर अनुकूल होंगे, तुम्हें कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। तो इस तरह से भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो योग माया को श्रम आदिशत सम्यक रूप से आदेश कौन दे सकता है? जो मालिक स्वामी है, परम पुरुष है, परम नियंता है, ऐसे भगवान ने आदेश दिया। मैं कभी कभी कहता हूं कि दुर्भाग्य है भारत वर्ष का कि इतना सुंदर स्पष्ट शास्त्र होते हुए भी लोगों को ये पता नहीं है कि देवता में और भगवान में क्या अंतर है। इतनी कथाएं हैं, इतना शास्त्र है और स्पष्ट है कि बार बार देवता भगवान के पास जाते हैं, धरती ने प्रार्थना किया राम जी के लिए और ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने निर्णय किया मोर कछु न बसाए, अब ये संसार का नियंत्रण मेरे पास की बात नहीं है, इसलिए जो हमारे तुम्हारे सबके रक्षक हैं, जहां से हम पैदा हो रहे हैं उन प्रभु की शरण में चला गया। तो इतना समझ के भी नहीं समझते हैं, तो भगवान ने आदेश दिया योग माया को, और वही आदेश इस श्लोक में है। सबसे पहले भगवान कहते हैं गच्छ जाओ, हे देवी, देव का संस्कृत में अर्थ होता है पूज्य, जो सब तरह से प्रसन्न करने लायक है, पूजा करने लायक है, उसको देव का, और उसी का स्त्री अपत्यवाचक शब्द है देवी। देवी का अर्थ होता है हे जगत पूज्या, जगत में संसार के सब लोग आपकी पूजा करते हो, आप पूजनीय हो। और एक अर्थ देवी का और होता है संस्कृत में, उसको क्रीड़ा परायण कहते हैं। दिवि मने जो दिव्य, क्रीड़ा परायण हो उसको देवी कहते हैं। देवी का एक अर्थ और होता है जो देव की है, देव की नहीं, देव की अर्थात भगवान की जो परम पूज्य की पराशक्ति है उसको देवी कहते हैं। ये देवी किसकी है? बोले देव की है। ये भगवती किसकी है? जो भगवान से प्रकट हुई है, भगवान से प्रकट होने के कारण उसका नाम भगवती है। और वैष्णवी कौन है? जो विष्णु से प्रकट हुई, विष्णु के शक्ति से शक्तिशाली है, वो वैष्णवी है। भगवान ने आगे नामकरण किया है देवी का, तो उसमें कहते हैं कि भद्रकाली और शारदा, अंबिका, कन्या इत्यादि इत्यादि, इन नामों से तुम्हारा बहुत बड़ा बड़ा मंदिर होगा, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। अर्चय मनुष्यास्तवाम सर्व काम धनेश्वरी, तुम समस्त जीवों के सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्था रहोगी, इसलिए सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। कहीं कहीं तो इतना भी कहा जाता है कि भगवान ने कहा, आशीर्वाद दिया कि जब तुम हमारी सेवा करोगी तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि हमसे भी अधिक तुम्हारी पूजा लोग करेंगे। और वास्तव में प्रकट है, आप देख लीजिए किसी भी गांव में भगवान कृष्ण का मंदिर हो या ना हो, देवी जी का मंदिर जरूर मिलता है। तीन देवता बिल्कुल पक्का मिलते हैं, हनुमान जी महाराज, शंकर जी और देवी। और गुजरात के किसी भी घर में चले जाइए तो एक फोटो मिलता है, भाई ये कौन है? बोले ये हमारी कुलदेवी। और बड़ी विचित्र स्वरूप है, कभी कभी शीतला हो जाती है भक्तों के लिए, ये शीतला हो जाते हैं शीतला शंकर मंदिर, और अभक्तों के लिए चंडी हो जाती है, प्रचंड शक्ति वाली, विनाश करने वाली शक्ति होती है। और हे देवी, हे भद्रे, भद्रे का अर्थ होता है समस्त जगत का कल्याण करने वाली, आप खास करके भक्तों का कल्याण करने वाली। प्रभुपाद जी दो तीन लाइन के तात्पर्य में कहते हैं, जो भक्तों को अभय प्रदान करे, ऐसी भद्र प्रदान करने वाली, हे भद्रे, तुम जाओ, क्या भद्रता करनी है? बोले ब्रजवासी जितने भी यादव हैं बड़ी कष्ट में हैं, भयभीत हैं, त्रस्त हैं, उनको भय से मुक्त करना है, इसलिए जाओ। कहां जाओ? ब्रज। और भगवान ब्रज की महिमा बता रहे हैं, बहुत सुंदर स्थान में तुमको भेज रहा हूं, जो स्थान गायों से और गोपों से और गोपियों से अलंकृत स्थान, गोप गोभी अलंकृतम। वास्तव में संसार की जो शोभा है, समृद्धि है, सद्विचार है, स्वास्थ्य है, ये सब गायों पर ही आधारित है। गाय जहां है, अब तो आजकल स्पेशल गो कथा भी होने लगा, परंतु एक बात जरूर ध्यान देने के लायक है कि भगवान भी अवतार लेकर के यहाँ आए तो पढ़ाई लिखाई और सब काम छोड़कर 11 वर्ष तक गायों के पीछे रहे। गाय आगे रहती थी और वो पीछे चलते थे, गोचारण मिला। भगवान ने ये दिखाया, समाज को स्वस्थ रखना है और स्वयं यदि बहुत बहुत असुरों का विनाश करना है तो गो माता का रस, गो रस लेना पड़ेगा। और सब कुछ, शरीर का स्वास्थ्य, बुद्धि का, मन का, जो कुछ भी यदि स्वस्थ रखना चाहते हैं तो गाय की आवश्यकता है समाज। तीसरे क्लास में मैं जब पढ़ रहा था तो एक बहुत सुंदर बात हमको मिली। आप लोग लेख जानते हैं ना, गाय पर, घोड़ा पर, कुत्ता पर, क्या क्या पर लेख लिखा है, निबंध लिखा जाता था, तो उसमें गाय पर लेख लिखाया गया था। तो उसमें ये भी दिखाया जाता है कितने रंग की होती हैं, क्या खाती हैं, तो उसमें एक लिखा रहता है इससे लाभ क्या है, गाय से लाभ क्या है। तो उसमें लिखा था कि पहले लोग गाय के साथ रहते थे तो इनकी बुद्धि गाय जैसी सुंदर। क्या सुंदरता है गाय में? बोले सूखा रूखा भूसा, खली चूना इत्यादि खाती है और अमृत जैसा दूध देती। बोले दूसरा लाभ क्या है? बोले गाय अपने खिलाने वाले को, जो उसका पालन करे, उसको कभी कष्ट नहीं देती। बोले तीसरा लाभ? बोले गाय आज तक कभी भी झूठ नहीं बोलती और बोले कपट नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करती। तो इतना सुंदर देह समाज को अमृत, और मेंटेनेंस भी लगभग कुछ नहीं, और किसी से झगड़ा नहीं, किसी को गाली न दे, किसी से झगड़ा न करे, झूठ न बोले, कपट न करे। इसलिए पहले के लोग गाय जैसे सीधे रहते थे, ये लाभ लिखा है, ये गाय से। भगवान यहां पर कह रहे हैं ब्रज की शोभा अलंकृत है, बहुत सुंदर सुसज्जित ब्रज है, किस चीज से? बोले गायों के द्वारा और गोपों के द्वारा। अब गोप का भी अर्थ होता है जो अपने इंद्रियों से भगवान के रस को, सौंदर्य को, माधुर्य को पीते रहे। गो भी पीवती, इंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा जो दिव्य भगवान के सौंदर्य अमृत का पान करते हैं, ऐसे गोपों से अलंकृत सुसज्जित ब्रज है। तुम वहां जाओ, मैं तुमको बहुत सुंदर जगह पर भेज रहा हूं। तो मानो देवी का क्या करना है वहां पर, सेवा क्या है? तब कहते हैं कि नंद गोकुले, नंद महाराज के गोकुल में वसुदेवस्य भार्या रोहिणी आसीत। श्री वसुदेव जी की एक भार्या, भार्या माने जो भरण पोषण करने लायक हो उसको भार्या कहते हैं, और जो भरण पोषण करे उसको भर्ता कहते हैं। भर्ता, गति भर्ता, भगवान गीता में कहते हैं मैं हूं गति भर्ता प्रभु साक्षी। तो वास्तव में वसुदेव जी को अपनी पत्नी रोहिणी का भरण पोषण करना चाहिए था, परंतु कंस के से संविघ्न होकर के, कंस से त्रस्त होकर के, क्योंकि पहले बच्चे के बाद ही तुरंत जेल में बंद कर दिया। केवल पहला बच्चा घर में हुआ और वसुदेव जी लेकर के आए और अभी घर पहुंचे भी नहीं थे तब तक नारद जी ने समझा दिया। और नारद जी जैसे ही निकले मथुरा मंडल के क्षेत्र को छोड़े तब तक तुरंत कहा अभी वसुदेव को पुत्र सहित और पत्नी सहित बुला लाओ। बुलाया। कंस ने भी सोचा कि नारद जी रहेंगे शायद तो बच्चे को मारने में कष्ट होगी, नंद देव की वसुदेव को नहीं मारने देंगे, इसलिए नारद जी को सुन लिया होगा कि नारायण नारायण करते हुए, कृष्ण कृष्ण करते हुए अब आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब मथुरा से बाहर चले गए। हरे कृष्णा तो रोहिणी के गर्भ में सातवां मेरा अंश है, सातवां पुत्र है। अन्यांश्च भगवान ने कहा कि वसुदेव जी की और भी अन्य पत्नियां हैं, लेकिन अन्येषु विवरेषु अन्य अन्य जगहों में गुप्त स्थान में छिप करके रहती हैं और कंस के भय के कारण विवरेषु वसंती ये एकांत स्थान में रहती हैं, लेकिन जो रोहिणी भी रहती है वो नंद बाबा के गोकुल में है, तुम उनके पास जाओ। वसुदेव जी की कितनी पत्नियां? मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे 14 या 15 कुछ संख्या है, 14 पत्नियां। एक पत्नी केवल देवकी साथ में कारागृह में है और एक पत्नी वही नंद बाबा के गोकुल में है और बाकी पत्नियां पता नहीं पति को छोड़ करके कहां कहां विवरेषु वसंती। इतना त्रस्त किया था, सबको ये पता था कि पति को और हमारी एक बहन को जेल में बंद किया, इतना कष्ट दे रहा है तो हम लोगों को भी प्राप्त करेगा तुम्हारे से। इसलिए भगवान ने देवी जी से आज्ञा दिया, भद्र करो हमारे भक्तों का और तुम मेरे साथ प्रकट भी होना, तुम मेरी बहन बनोगी, यशोदा के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा और भक्तों की सुरक्षा करना। तो वास्तव में योग माया और महामाया ये दो माया है। योग माया उसे कहते हैं जो भगवान से जोड़ दे। योग का अर्थ तो आप जानते ही हैं, दो और दो का योग, योग माने जोड़ दे, जो भगवान की शक्ति भगवान से जोड़ दे वो योग माया, और जो भगवान से अलग कर दे वो महामाया। बोले भगवान की ऐसी भी शक्ति है जो भगवान से अलग रखेगी उसको महामाया कहते हैं, और भगवान ने उसको आज्ञा किया है, उस महामाया को भी भगवान ने आज्ञा किया है कि एक काम करो, जो मुझसे अलग रहना चाहते हैं उनको कभी भी मेरे भजन में मेरे मंदिर में मत आने दें। भागवत में लिखा है, भगवान कहते हैं ऐसे मूर्ख लोगों को, पापी लोगों को, चतुर्विधा लोगों को, जनान मद विमुखान करो, उनको मेरे सामने मत आने देना, मेरे विपरीत मुख में रखना उनको। तो दो प्रकार की माया है, एक योग माया और एक महामाया। योग माया भक्तों के साथ रहती है और महामाया संसार के लोग भगवान के शरण में नहीं आते हैं, ये भी एक भगवान की शक्ति है। और दोनों में युद्ध होता है, भक्तों में और दुष्टों में। भक्त चाहते हैं कि सब योग माया के अंदर आ जाए, भगवान से जुड़े, उनके मंदिर में आए, उनका नाम ले, उनकी कथा सुने, परंतु बाहर की माया भी कमजोर नहीं है, वह अभी भगवान की आज्ञा से मजबूत है। उसको भी भगवान ने आ कह दिया और उसको भी भगवान शक्ति दे रहे हैं कि जनान ऐसे जन्म मृत्यु में पड़े हुए कीड़े मकोड़े को मेरे सामने मत आने देना, उनके बुद्धि में प्रवेश कर जाना कि नहीं नहीं संसार ही सत्य। और उसी के लिए भगवान कहते हैं मम माया, वो भी मेरी माया है लेकिन दुरत्याय माया है, उसको पार करना बड़ी कठिन। और गर्व के साथ कहते हैं कोई साधारण ऐलू गैलू की माया नहीं है, मेरे जैसे परम शक्तिशाली की माया है, इसलिए वो भी कमजोर नहीं है। लाखों लोग जो भगवान से विपरीत मुख किए हैं, विरोध किए हैं, विमुख हैं, वो भी भगवान की माया के कारण है। जैसे भगवान आज्ञा दे रहे हैं, यहाँ तो आज्ञा है कि भाई रोहिणी के गर्भ को निकाल करके जो मेरा ही स्वरूप है, उधर सन्निवेश वो भी तुम्हारे आराध्य देव है देवी, उनको बड़ी आदर से उस गर्भ से निकालना है और बड़ी आदर से माता रोहिणी के गर्भ में रखना है, क्योंकि वो भी कोई सामान्य बालक नहीं है, वो मेरे ही धाम है, मेरे ही स्वरूप है। इस तरह से भगवान ने आदेश दिया और महामाया और योग माया दोनों का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, बोले जिस समय भगवान मथुरा में प्रकट हुए तो जितना भी अद्भुत चमत्कार हुआ ये सब महामाया का चमत्कार। बेड़ी पांव का खुल जाना, सॉरी जो देवकी और वसुदेव के साथ जो हो रहा है वो भगवान की योग माया का प्रभाव। पैर की बेड़ी खुल जाना और दरवाजे का किवाड़ खुल जाना, बहुत विशाल विशाल दरवाजा, आप लोग मथुरा वृंदावन गए हैं देखते ना कितना बड़ा बड़ा दरवाजा है, और उसमें भी स्पेशल पूरे इंडिया का फेमस ताला कंपनी है अलीगढ़। अब जानते ना दुनिया में जितना भी ताला लॉक बनता है उसका सबसे बड़ा कंपनी अलीगढ़ में वही बगल में है, वहां से स्पेशल ताला मंगाया था ये भाग न जाए। परंतु तो मथुरा में जितने भी कुत्ते थे पहरेदार थे, सुखदेव गोस्वामी कुत्ता कहते थे, द्वारपाल थे जो बिना पेमेंट का दरवाजे का पालन करता रहता है, आप दो टुकड़ा भी मत दो लेकिन कुत्ता रात भर ड्यूटी करता है सिटी के जाए, कोई भी आ जाए। हम लोग कभी कभी रात में गुजरते हैं तो कार के पीछे दौड़ करके अपने एरिया को पार कर देता है, क्यों आ गया हो 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 करता है, उसका एरिया बना हुआ है, पेमेंट उसको क्या मिलेगा कुछ नहीं। तो कहते हैं ये कुत्ते जो कंस की नौकरी कर रहे हैं ये सब के सब सो गए, सो नहीं गए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर समझने की बात है कि भगवान का जन्म हुआ तो ये सोए नहीं, द्वारपाल भी ऐसे डंडा लिया है और खड़ा है लेकिन उसके आंख में जो दृष्टि शक्ति है वो समाप्त हुई। जैसे एक प्लास्टिक वाला देखे हैं ना आप लोग, कपड़ा पड़ा पहना के खड़े रहते हैं तो देखने में तो लगता है कि कोई है, कपड़ा भी सुंदर है परंतु वो देख सकता नहीं बोल नहीं सकता, उसी तरह खड़े के खड़े रह गए, न तो उनमें देखने की शक्ति न समझने की शक्ति, ये महामाया का आश्चर्य हुआ। और नंदगांव में गोकुल में माता जसोदा को हल्का बेहोश करना, वहां पर जो कुछ भी घटना हुई वो घटना योग माया की कृपा से। तो भक्तों के साथ योग माया और दुष्टों के साथ महामाया, एक बहुत सुंदर यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भद्रे का अर्थ होता है भक्तों को अभय प्रदान करने वाली। मुझे स्मरण आ रहा है महाराज भरत का प्रसंग, जट भरत जी एक बार उनको भी देवी जी के यहाँ ले गए और इतना खतरनाक लाल कपड़ा ओढ़ाए, फूल पहनाए, माला पहनाए, पुआ पूरी खिलाए, सब खाते गए। और जैसे ही उनका भी अपना कुछ मंत्र होता है, कुछ गाते बजाते हैं और पशुओं के बलि में भी थोड़ा बहुत तो देखा हुआ है बचपन में, एक बार में यदि उस पशु का गला कट जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, और बिल्कुल धार सांग तेज करके और अपना अंतर मंत्र पढ़ रहे थे, और इधर तो ये मस्त है, भीतर भीतर हरि चरण का, भगवान के चरणों का स्मरण कर रहे हैं, और जो भी वो लोग खिला रहे हैं सब ज्ञान है, ये मुझे खिलाएंगे, पूजा करेंगे है? जैसे बलि का बकरा बहुत प्रसिद्ध है, लोग खिलाए पिलाए, तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं, नया वस्त्र देते हैं, वस्त्र पहनने के लिए नहीं ऐसे ओढ़ा देते हैं, और फिर गर्दन झुका करके सीधे तलवार मारना है, ऐसे ही मारने का जैसे प्रयास किए तो जो देवी का मूर्ति था वो बिल्कुल जल गया और बिल्कुल दो फट करके, और उस दुष्ट जो पुरोहित था, पुरोहित भी कोई मतलब ब्राह्मण नहीं था, उनका पुरोहित भी असुर ही था, कोई राक्षस ही था, उनके हाथ से तलवार लेकर के और खचा खच सबका, और देवी ही अनेक रूपों में प्रकट होकर के हाथ में खपर ले लेकर के उनके गर्म खूनों को पीने लगा, और उनके कुछ गण प्रकट हुए और जो गर्दन कटा था उनका बिल्कुल फुटबॉल होने लगा, इधर से उधर मारने लगी, गेंद की तरह पैर से मारते उधर से उधर उधर, एक बहुत बड़ा मतलब न्यूज ये क्या कहते हैं स्टेडियम हो गया, फुटबॉल मैच चालू हो गया, और अंत में देवी ने क्षमा मांगा कि हे वैष्णव श्रेष्ठ, आप इन मूर्खों का अपराध क्षमा दीजिए, यदि देवी जी ने भक्त की रक्षा नहीं की होती तो महाराज जी कहते हैं कि देवी को भी ये कारण बताना पड़ता कि तुम्हारे सामने ये हमारे भक्त की घटना हुई और तुम देखती रही, क्यों ऐसा जघन्य अपराध हुआ, तो देवी को भी कारण बताना पड़ता, इसलिए एक भक्त का अपमान और देवी के सामने हो ये परम शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो भगवान की और भक्तों को अभय प्रदान करती है ये, प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं भद्रे, भगवान कह रहे हैं हमारे भक्तों का कल्याण करना, और भक्त यदि भजन करने लगे तो उनको खूब शक्ति देना, शक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सातवें गर्भ के रूप में श्री बलराम जी आए हैं, तो भगवान कहते हैं उनको वहां से निकालो, खाली करो जगह, और श्री बलराम जी सात रूप में भगवान की सेवा करते हैं, और यह भी एक सेवा है कि भगवान के आने के पहले श्री बलराम जी उस गर्भ में जाए, तो जो कुछ भी था भगवान के पहले, जैसे ये मंत्रियों के पहले सब सेवक आते हैं, उसी तरह से बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आए और सब कुछ ठीक ठाक करके वहाँ सब निकलेंगे, और इसके बाद भगवान का प्रादुर्भाव होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। धन्यवाद। कोई प्रश्न है मत पीजिए क्योंकि टाइम अधिक हो गया है ना।
कृष्णपाद की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।